ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संगम त्यजेत मिथुनावर्तिना मुमुक्षो सर्वात्मना विसृजेत बहिरिन्द्रियाणि। एकश्चरन् रहिसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जित् तत्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसङ्गा। संगम त्यजेत मिथुनव्रतिनां मुमुक्षा सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि। एकश्चरन् रहिसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जत् तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसङ्गा। संगम त्यजेत मिथुना व्रतिनां मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि। एकश्चरश्चरन् रहसि चित्तम् अनन्त ईशे युञ्जे तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसङ्गा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्लोक है चरण भक्ति विदास स्वामी श्लोक प्रभुपाद के द्वारा। श्लोक प्रभुपाद की जय। संगम संगति त्यजेत छोड़ देना चाहिए मिथुन वृत्ति नाम वैध या अवैध मैथुन कार्यों में लगने रहने वाले व्यक्तियों को। मुमुक्षा मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति सर्व आत्मना सभी प्रकार से ना नहीं विसृजेत काम में लगाएं बही इंद्रियाणि बाहरी इंद्रियों को। एकह अकेले चरण घूमते हुए रहसी एकांत स्थान में चित्तम मन अनंत ईशे असीम भगवान के चरण कमलों पर स्थित युञ्जेत लगाएं तत् वृतेषु एक ही कोटि के लोगों के साथ जो भव बंधन से मोक्ष की के कामी हो। साधुषु ऐसे पुरुषों की चेत यदि प्रसंग संगति। अनुवाद। भव बंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य कार्य में देखने सुनने बोलने चलने इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरणों चरण कमलों पर पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसी प्रकार के कार्य में लगे पुरुषों की संगति करनी चाहिए। तात्पर्य। सौभरी मुनि अपने अनुभव से प्राप्त निष्कर्षों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए उपदेश देते हैं कि भव सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को वासनामय जीवन और धन संग्रह में व्यस्त रहने वाले मनुष्यों की संगति त्याग देनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी यही उपदेश दिया है। निष्किंचनस्य भगवत भगवनो भजनो मुनवखस्य पारम परम जिगीमर्षम भवसागरस्य संदर्शनम विषयीर अथयोषिताम च हाहंत हंत विषभक्षणो अप्यसाधु। ओ भव सागर को पार करने की मंशा तथा बिना किसी कामना के भगवान को दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने की इच्छा सच्ची इच्छा रखने वाले के लिए इंद्रदीप्ति में लगे भौतिकवादी को देखना तथा इसी प्रकार की रुचि वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विषपान करने से भी घृणित कार्य है। जो व्यक्ति भव बंधन से पूर्ण छुटकारा पाना चाहता है उसे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगना चाहिए, उसे विषयी पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। हर भौतिकवादी व्यक्ति की काम वासना में रुचि रहती है। इस तरह सीधे साधे शब्दों में यह सलाह दी गई है कि उच्च साधु पुरुष को भौतिकवादी वृत्ति प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति से बचकर रहना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी आचार्यों की सेवा करने के लिए संस्तुति करते हैं और यदि किसी की संगति करनी है तो भक्तों की संगति करनी चाहिए। तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास। कृष्ण भावनामित आंदोलन भक्त उत्पन्न करने के लिए अपने अनेक केंद्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे ऐसे केंद्रों के सदस्यों के संपर्क से संपर्क बढ़ाने से लोगों को भौतिक कार्यों में स्वतः अरुचि होने लगी। यद्यपि यह अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है किंतु यह संगठन भगवान चैतन्य महाप्रभु की दया से प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। कृष्ण भावनामित आंदोलन के सदस्यों की क्रमशः संगति करने, केवल प्रसाद ग्रहण करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से सामान्य लोग काफी ऊंचे उठ जाते हैं। सौभरी मुनि को पश्चाताप हो रहा है कि अत्यंत गहरे जल में भी वह बुरी संगति में रहे और मैथुन रत मछलियों की कुसंगति से उनका पतन हुआ। एकांत स्थान भी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक वहाँ अच्छी संगति। पहले मैं सभी वरिष्ठ भक्तों से आशीर्वाद की याचना करना चाहूँगा कि मैं भागवतम के इस प्रसंग पर कुछ बोल सकूँ सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए। श्रीमद् भागवतम है जो वो पुस्तक है जिसमें बहुत सारी हम केस स्टडीज देखते हैं बहुत सारे भक्तों के बारे में और कि हम कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा, उन सब के बारे में हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे उस चीज़ को अपना सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम से हम ये सब चीज़ सीखते हैं और स्पेशली ये जो प्रसंग चल रहा है अभी सौभरी मुनि का पतन जो अध्याय है, तो नवस्कंद जैसे पहले काफ़ी सारे जो स्पीकर्स हैं उन सब ने बताया कि जो नवस्कंद है वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम दसवें स्कंद में एंटर करने के लिए। दशम स्कंद में हम भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे तो लेकिन उसके लिए हमको अपना शुद्धिकरण करना ज़रूरी है पहले। तो इसलिए नवे स्कंद में हम ये जान रहे हैं कि किन किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ों से हमको सतर्क रहना है, बचना है, ताकि हम भगवान को समझ सकें और भगवान की लीलाओं को समझ सकें। तो यहाँ पे हमको बहुत सारी वार्निंग्स दी जा रही हैं, बहुत सारे क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं हमारे इस रास्ते में उसके बारे में बताया गया। जैसे यहाँ पे सौभरी मुनि के जो उनका प्रसंग है उसमें भी हम देखते हैं कि कैसे वो कुछ मछलियों के संघ को देखकर उससे प्रभावित हो गए और उन्होंने जो अपनी सिद्धि जो प्राप्त किया था जल में जल के अंदर गहरे जल में तपस्या कर रहे थे उस सिद्धि को उसका सारा उसका इस्तेमाल कैसे उन्होंने अपने दीप्ति के लिए किया और अपने जो पथ से उसे भ्रमित हो गए थे। तो हम भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं सब और सब साधक के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं लेकिन माया निरंतर स्तर पे हमको कुछ ना कुछ प्रलोभन देती रहती है, कुछ ना कुछ वस्तुएं भेजती रहती है जिससे हम अपने पद से भ्रमित हो जाएं और कई बार बहुत बार इनफैक्ट हम अपने उस जो माया के झूठी आशा खुशी की जो झूठी आशा है फॉल्स होप्स ऑफ हैप्पीनेस उसमें फंस जाते हैं और हम भी अपने भक्ति के जो प्रोसेस है उससे डिवेट हो जाते हैं या फिर भक्ति स्टैगनेट हो जाती है, कई बार रुक जाती है हमारी। तो कैसे उसमें हमको उससे हम बच सकते हैं यहाँ पे सौभरी मुनि अपने एग्जांपल से दिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए उस स्थिति में उस भक्त को, स्पेशली अभी जो हम कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं इस पहले वाले श्लोक से और अब जो है श्लोक आगे वाले कि कैसे जो भक्त फंस चुका है ऐसी स्थिति में जो ऐसे माया के प्रकोप में माया के ऐसे प्रलोभन में फंस गया तो कैसे निकलना चाहिए उसे, क्या करना चाहिए उसे, क्या क्या उसे ध्यान रखना चाहिए, तो वो बता रहे हैं। और दूसरा ये भी बता रहे हैं कि अगर हमको नहीं फंसना माया के प्रलोभन में तो क्या क्या करना होगा हमें या क्या क्या नहीं करना होगा। तो ये सौभरी मुनि बता रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सौभरी मुनि के इस प्रसंग से कि वो कैसे सबसे पहले दिखा रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति में कोई भक्त फंस जाते हैं और ऐसा कुछ परिस्थिति को प्राप्त करते हैं, सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो सौपड़ी मुनि दिखा रहे हैं कि वो पश्चाताप कर रहे हैं उस चीज़ का, रिपेंटेंस। तो ये रिपेंटेंस बहुत ज़रूरी है। जब प्रभुपाद बता रहे हैं पहले स्कंद के 19वें अध्याय में, इसमें परीक्षित महाराज को जब श्राप मिलता है, उसके बाद प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य बता रहे हैं पहले श्लोक के ही, शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। परीक्षित महाराज बहुत दुखी हुए कि जब उनके श्याम कृषि के पुत्र ने उनको श्राप दिया। जय श्री राधा राधिका भगवान, विष्णु बलराम की, जगन्नाथ बल्ले सदरानी की, जय पंडिताय की, जगत कृष्ण प्रभुपाद की। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे कितनी इंपॉर्टेंस है पश्चाताप करने की, रिपेंटेंस की, कि जब कोई भक्त, क्योंकि हम सब अपने संस्कारों से जूझ रहे हैं और कुछ ना कुछ अनर्थ हैं जिनसे हम सब फाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माया कई बार हावी हो जाती है और हम माया के प्रलोभन में आ जाते हैं। तो उस समय हमको, जब हम क्या, कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हम वापस फाइट बैक कर सकते हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद कि जब हम पश्चाताप करते हैं तो उस पश्चाताप की अग्नि से हमारे जितने सब पाप हैं वो सब जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम और भी बहुत सारे प्रसंग देखते हैं, जैसे अजामिल का, अजामिल जब उसको जब विष्णुदूत के दर्शन हुए, यमदूत ने बचा, यमदूत से बचाया विष्णुदूतों ने, तो उसको बाद में पश्चाताप हुआ बहुत कि मैंने कैसे अपना पूरा जीवन खराब कर दिया। ऐसे भरत महाराज के प्रसंग में देखते हैं, भरत महाराज जब हिरण से आसक्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई और हिरण बन गए अगले जन्म में, तो हिरण जब बन गए तब भी वो पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने पिछला जन्म अपना कैसे, मैंने इतनी उच्च अवस्था में, भाव की अवस्था तक पहुंच गया था मैं, लेकिन फिर भी उस हिरण से आसक्ति के कारण मैंने अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसको खो दिया। तो फिर वो कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं और कितना अच्छे से वो भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं ऐसे कि प्रयासित बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट दशवें स्कंद में भी हम देखते हैं ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो भक्त ऐसे प्रयासित करता है और अपने भक्ति में कार्यों में लगे रहता है, तत्ते अनुकंपाम सुसमिक्षमाणो, जो अपने भक्ति मारे कार्यों में लगे रहता है और भगवान को अपने अनर्थों के जानता है, मेरे अनर्थों की वजह से, मेरे पापमय कर्मों की वजह से मैं दुख झेल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी भक्ति में फिर भी लगे रहूँगा, तो वो व्यक्ति उसको, वो एलिजिबल बन जाता है मुक्ति को प्राप्त करने के, जो मुक्ति है उसका जन्म से अधिकार बन जाता है ऐसे भक्त का। तो इसलिए प्रायश्चित बहुत बहुत शक्तिशाली हमारे पास चीज़ है, जिससे हम भक्त, जिसने हमें सारे अनर्थों को काट सकते हैं। तो यहाँ पे भी सौभरी मुनि प्रायश्चित कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में, 50वें श्लोक में वो बता रहे हैं सौभरी मुनि, जो इससे पहले वाला श्लोक था, ओह गहन जल के भीतर तपस्या करने पर तथा साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सारे विधि विधानों का पालन करते हुए भी मैंने मात्र मछली के मैथुन सन्निध्य के कारण अपनी दीर्घकालीन तपस्या का फल गवा दिया। इस पतन को देखकर हर एक को इससे सीख लेनी चाहिए। दुर्वासा मुनि, सॉरी सौभरी मुनि हमको सीख दे रहे हैं, अपने एग्जाम्पल से सीख दे रहे हैं कि कैसे हमको बचना चाहिए, कि अपने एग्जाम्पल से दे रहे हैं कि हमको इससे बचना चाहिए, इससे सावधान रहना चाहिए, इसे सीख लेनी चाहिए। और आज के श्लोक में फिर वो बता रहे हैं संगम त्यजेत, कि संग को त्याग कर देना चाहिए, किसका, मिथुन वृत्ति ना, जो लोग सेक्स लाइफ में मिथुन जीवन में आसक्त हैं, किसको संग त्याग देना चाहिए, मुमुक्षु, जो लोग मुमुक्षु जो लिबरेशन की कामना करते हैं, जो मुक्ति की कामना करते हैं, हर तरीके से सर्वात्मना, हर तरीके का संग छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों का, और उनको अपनी इंद्रियों को किसी भी तरीके से इन कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। विसृजेत इंद्रियाणी, और क्या करना चाहिए उनको, कि एक स्थान पर रहकर भगवान के ऊपर मनन करना चाहिए, अपना चित्त को लगाना चाहिए। और अगर किसी को फिर भी किसी का संग करना है, चेत प्रसंग, अगर संग करना भी है तो किसका संग करना चाहिए, साधुषु, कैसे साधुषु, तद वृत्तिषु, जिनकी वृत्ति, जिनका टेंडेंसी वैसी है, जिनकी मनोभावना वैसी है जैसे हमारी मनोभावना, यानी कि वो भी अगर इसी पथ को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हमको संग करना चाहिए, अगर संग करना भी है तो। यहाँ पे बता रहे हैं दुर्वासा सौबरी मुनि। तो यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बताया सौबरी मुनि ने अपने लाइफ से कि कितना ज़रूरी है संग। हमने पिछली बार जब मेरे को मौका मिला पिछली बार ये चर्चा करने का, तब हमने संग के बारे में चर्चा किया था, कैसे भगवान कितना वैल्यू करते हैं अपने भक्तों को, भगवान अपने भक्तों को कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ, और कोई भगवान अगर भक्त के प्रति अपराध करता है तो मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, भगवान बताते हैं। और उसी के विपरीत हम देखते हैं कि अगर कोई, यहाँ पर सौबरी मुनि बता रहे हैं, अभक्तों का संग करता है तो वो अपनी भक्ति से च्युत हो जाता है। अभक्तों का संग कितना खतरनाक है यहाँ पे वो बता रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चैतन्य इसके बारे में आता है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप राजा प्रताप रुद्र से मिलिए, और बहुत सारा उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शोक प्रकट करते हुए बोला कि अत्यंत शोक प्रकट करते हुए महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बतलाया, हाय जो व्यक्ति भव सागर को पार करना चाहता है और बिना किसी भौतिक वस्तु हेतु के भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगना चाहता है, उसके लिए इंद्र तृप्ति में लगे भौतिकवादी अथवा ऐसी ही रुचि रखने वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विष खाने से भी अधिक निंदनीय है। तो महाप्रभु ने ऐसा बोला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, लेकिन वो कोई सामान्य राजा नहीं है, वो तो आपका महान भक्त है, वह जगन्नाथ जी का महान भक्त है और आपका सेवक है, तो वो उससे तो मिल सकते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, ये सच है कि राजा महान भक्त है, फिर भी उसे विषैला सांप ही समझना होगा। इसी प्रकार स्त्री चाहे काट की ही पुतली क्यों ना हो, उसके रूप का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य विचलित हो जाता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि, और आगे बता रहे हैं, जिस तरह मनुष्य किसी जीवित सर्प या सर्प की आकृति को देखने से डर जाता है, उसी तरह आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्ति को भौतिकवादी पुरुष का तथा स्त्री से डरना चाहिए। तो बता रहे हैं हम उसी तरीके से डरना चाहिए जैसे कि हम कोई सांप से डरता है, कोई अगर नकली कोई मरा हुआ सांप पड़ा हो या नकली भी सांप पड़ा हो तो डर जाते हैं लोग, एक बार अवस्था जीवित हो। तो उस तरीके से बता रहे हैं हमको, जो भौतिकवादी लोग हैं जो इंद्र तृप्ति में रुचि रखते हैं, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं यहाँ पे। और ये अभक्तों का संग करना इतना महत्वपूर्ण है हमारी भक्ति के लिए कि श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में, जो सारे उपदेशों का सार है, उस उपदेशामृत में दो श्लोकों में इसी के बारे में चर्चा किया, जन संग और संग त्याग, श्लोक दूसरे और तीसरे में यही बताया कि कितना जरूरी है कि अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियम आग्रह जन संघ लौल्यम षडवीर भक्ति विनश्यति, कि इससे हमारी भक्ति विनाश हो जाती है। और अगर हमको अपनी भक्ति को प्रसिद्धि उसको अगर हमको बढ़ाना है तब भी क्या करना होगा, वो छोड़ना होगा, संग त्याग करना होगा ऐसे लोगों का। तो इतना जरूरी है ये संघ का त्याग करना, असत्संग का त्याग करना, कि श्री रूप गोस्वामी ने इसको इसके बारे में इतना बताया है। भगवान उद्धव को 11वें स्कंद में बता रहे हैं इसके बारे में कि हमें कभी भी भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने उदर और उपस्थ के तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को अगर हम फॉलो करेंगे, उस ऐसे लोगों का हम संग करेंगे, तो इसके समान है कि हम गहरे अंधकार में गिर रहे हैं, अंधकूप में गिर रहे हैं, तो उसके समान है। चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि अभक्तों का संग करना उसके समान से बेटर, अगर आपको ऑप्शन मिले कि एक अभक्तों का संग करना और दूसरा ऑप्शन है कि एक जलते हुए पिंजरे में घुस जाना या जलती हुई जगह में घुस जाना, आग में घुस जाना, तो बेटर क्या होगा कि आग में घुस जाए। ऐसा क्यों बताया गया, इसलिए बताया गया क्योंकि भौतिक आग में अगर हम घुसेंगे तो वो उसने हमारे शरीर को जलाएगी, लेकिन अभक्तों के संग से क्या होगा, हमारे कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, जो हमारे कृष्ण की सेवा की भावना है, उसको खत्म कर देगा। भौतिक आग से हो सकता है इस जन्म हमारा खराब होगा, इस जन्म में हम मरेंगे, लेकिन अभक्त के संग से, असत्संग से हम जन्मों जन्म मरते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो उसको हानि पहुंचाएगा वो। तो असत्संग कैसे हमारे जीवन में हानि पहुंचाता है, बहुत सारे तरीके से पहुंचा सकता है, बहुत सारे उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं असत्संग के। असत्संग से हम आध्यात्मिक चीज को भी भौतिक देखना लग जाते हैं, बताते हैं कई बार कि माइंड का ये टेंडेंसी होती है किसी भी आध्यात्मिक चीज को भौतिक बनाने की, तो ऐसी असत्संग में करने से, ऐसे लोगों का संग करने से जो भौतिकवादी हैं, ऐसे ऐसे लोगों का संग करने से हमारा जो जो आध्यात्मिक वस्तुएं भी हैं उनको भी हम भौतिक समझने लग जाते हैं। जैसे हम देखते हैं रावण को, रावण भगवान को क्या समझ रहा था कि भगवान एक साधारण व्यक्ति हैं, उसको ऐसे एडवाइस मिल रहे थे अपने सब एडवाइसर से। भक्त अभक्तों के संग से हम वैष्णव अपराध करने गए में हम रेडी हो सकते हैं, या फिर वैष्णव अपराध करने के लिए हम प्रोत्साहित हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब दक्ष 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 के उस सभा में जब दक्ष ने शिव जी के प्रति अपराध किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दक्ष का संग कर रहे थे, मतलब कि दक्ष के सपोर्ट कर रहे थे, और वो सब भी काउंट हुए उस वैष्णव अपराध में, और उन सबको फिर दंड मिला बाद में। कैसे हम देखते हैं जितने भी यहाँ पे और राजा थे और कुछ ऋषि थे, उन्होंने दक्ष का सपोर्ट किया उस वैष्णव अपराध में, इसलिए वो भी वैष्णव अपराध के पार्ट बने। तो असत्संग से हम वैष्णव अपराध कर सकते हैं। असत्संग की वजह से हमारा शास्त्रों में जो है श्रद्धा है वो खत्म हो सकती है। श्री प्रभुपाद के एक सेवक थे, जब जब अमेरिका ने मून में चंद्रयान भेजा मून के ऊपर, तो श्री प्रभुपाद के एक शिष्य थे, प्रभुपाद के सेवक थे, पर्सनल सर्वेंट थे उनको, लेकिन विश्वास नहीं था। प्रभुपाद बोलते थे कि जो लोग हैं ये लोग चंद्रमा पे नहीं जा सकते, वो नहीं गए चंद्रमा पे, वो कहीं और गए, बट उन शिष्य को विश्वास नहीं था प्रभुपाद की बात पे, और उनको अपने एडवांसमेंट पे बहुत विश्वास था, नहीं अमेरिका ने बहुत अच्छा किया है, और वो बहुत ज़्यादा बोलने लगे। जब भी प्रभुपाद कहते थे तो वो कहते नहीं प्रभुपाद गए हैं वो चांद पे, और जब वो दिन आया जब वो चांद पे जा रहे थे और उन्हें कदम रखना था, तो वो स्पेशली एक टीवी लेके आए, प्रभुपाद को दिखाया, सब भक्तों को दिखाया, देखिए देखिए वो चांद पे जा रहे हैं। तो प्रभुपाद उनका हमेशा मजाक उड़ाते थे। एक बार वो भक्त मिल नहीं रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कहाँ है वो, तो भक्तों ने कहा पता नहीं प्रभुपाद वो कहाँ गए हैं। प्रभुपाद ने कहा मे बी ही हैज गॉन ऑन मून, शायद वो मून पे चले गए। तो प्रभुपाद ऐसे उनको बार बार जाते थे, लेकिन उनको विश्वास नहीं था प्रभुपाद पे। तो बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद वो फिर प्रभुपाद की सेवा छोड़ के चले गए और भक्ति से भी चले गए, क्योंकि उनको असत्संग की वजह से, उन भौतिकवादियों का संग उनको ज़्यादा पसंद, या फिर ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस थे वो भौतिकवादी साइंटिस्ट या फिर भौतिकवादी लोगों से। असत्संग से हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जैसे हम अजामिल के केस में देखते हैं, अजामिल सिर्फ उस वैश्या और उस शूद्र का संग उनको देखने मात्र से क्या हुआ, उनकी भौतिक इच्छा बढ़ गई, और उसकी और इसी से असत्संग से हमारी भक्ति में जो रुचि है, भक्ति में जो उत्साह है, वो खत्म हो जाता है। असत्संग करने से हम चांसेस है कि हम फिलोसफिकली डेविएट हो सकते हैं, अपनी फिलोसफी से, अपने सिद्धांत से डेविएट हो सकते हैं। हमारे इस्कॉन में हम देखते हैं बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, बहुत जगह पे ऐसा हुआ भी है, जो भक्त अपने सिद्धांत में पक्के तरीके से स्थिर नहीं है, या औरों के और जगह पे गलत सिद्धांतों को सुनने में प्रयास करते हैं, तो वो फिलोसफिकली डिबेट हो जाते हैं। ऐसे लोगों का संग करते हैं जो गलत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, तो वो भी फिलोसफिकली डिबेट हो जाते हैं। तो असत्संग से बहुत सारे प्रभाव होते हैं व्यक्ति को भी, और इनफैक्ट इस्कॉन सोसाइटी को भी। श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं इस्कॉन सोसाइटी बनाए इसलिए है ताकि हम सब मिलकर साधु संग कर सकें। तो असत्संग करते ही हैं तो क्या होता है, जो पर्पस है सोसाइटी का वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं हमने सोसाइटी बनाई इसलिए है कि सब लोग आके भक्तों का संग कर सके, सत्संग कर सके, लेकिन जब असत्संग करेंगे तो हम सोसाइटी के पर्पस को डिफीट कर रहे हैं, प्रभुपाद ने बनाया। तो इसलिए असत्संग बहुत हानिकारक है। प्रभुपाद बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में कि असत्संग करने से जो हमारी भक्ति है वो इंद्र दीप्ति में बदल जाती है, और जब वो इंद्रिय तृप्ति हमारे मन में घुसती है तो हमारा पूरा मन कंटामिनेट हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो असत्संग के प्रभाव से। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे वैष्णव का सबसे पहला बिजनेस है कि वो असत्संग को छोड़े, अभक्त लोगों के संग को छोड़े। सो बहुत तरीके से हम असत्संग को प्राप्त भी करते हैं अपने आस पास, स्पेशली आजकल जैसे मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है, तो इंटरनेट एक सबसे बड़ा माध्यम है जिससे हम असत्संग को प्राप्त करते हैं। हालांकि इंटरनेट से हम बहुत यूजफुल भी यूज़ कर सकते हैं, हम ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट वगैरह कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ इंटरनेट से हम बहुत सारा असत्संग भी प्राप्त करते हैं। इंटरनेट में एक ही हमारे क्लिक पे हमको पूरे दुनिया का जितना कूड़ा है दिख सकता है, सारा का सारा असत्संग एक ही बारे में हमको अवेलेबल हो सकता है, चाहे अमेरिका का, चाहे यूरोप का, चाहे इंडिया का, चाहे कहीं का भी, हर जगह का असत्संग हम कर सकते हैं एक ही जगह बैठे हुए एक क्लिक से। भौतिक चर्चाएं सुनने में हम वहाँ पे सुन सकते हैं आसानी से, भौतिक न्यूज़, मंडे न्यूज़, अननेसेसरी की, वो सब भी सुन सकते हैं। किसी के बारे में जो उपहास ब्लास्फीमी किसी की निंदा, ये बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती है हमको इन इन जगहों पे। कई बार बहुत खतरनाक होता है कि जब भक्तों के बारे में भी क्रिटिसिज्म होता है, सोसाइटी के बारे में क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि इंटरनेट है वो फ्री है, फ्री एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, अपने एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो कोई भी कुछ भी लिख रहा है, कोई भी कुछ भी बता रहा है। प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेट का हम ये चेक नहीं कर सकते कि या बता नहीं सकते कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है कौन सी गलत है। तो कई बार इनोसेंट लोग होते हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन को भी सही मानकर वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो इसलिए ये गलत तरीके से भी यूज़ हो सकता है इंटरनेट, एक तरीका है असत्संग करने का। दूसरा असत्संग करने का एक तरीका हो सकता है कि कई बार हम प्रचार करते हैं, लोगों को संग देते हैं, लेकिन उनको संग देने की जगह हम उनका संग ले लेते हैं। तो हमको उनको अपना संग देना है लेकिन हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। हम कई बार प्रचार करने जाते हैं किसी को, उसके इतना बड़ा घर देखा, इतनी बड़ी गाड़ी देखी, इतना धन देखा, तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। इतना बड़ा फोन है उसके पास, मेरे पास भी होना चाहिए। तो हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनको प्रभाव करने की जगह तो हम ऐसे ऐसे सत्संग करने बैठते हैं। या फिर अपने भौतिक पुराने मित्रों के द्वारा, आजकल फेसबुक बड़ा आ गया, फेसबुक व्हाट्सएप, तो आपके जितने भी पुराने पुराने मित्र होंगे, जितने भी कभी आप भूल भी चुके होंगे, वो भी आपको भूल चुके होंगे, वो सब आपको याद मिल सकते हैं एक ही बारे में। आप बस फेसबुक पे अकाउंट बना लिया, तो खूब प्रचुर मात्रा में सत्संग करेंगे, हमने पहले जमाने में क्या किया था, कैसा कैसा किया था, तो सब याद आ सकता है। तो असत्संग उससे मिलता है हमको। असत्संग होता हो सकता है भक्तों के समाज में भी, जब हम भक्तों के समाज में निंदा करते हैं, भक्तों के समाज में हम नॉन डिवोशनल टॉक्स करते हैं, प्रज्वलन करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह या फिर इन चीज़ों के बारे में चर्चा करते, पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में चर्चा ज़्यादा करते हैं, तो ये तरीका है असत्संग करने का भक्तों के बीच में। श्री प्रभुपाद बताते हैं भक्तों अभक्तों का संग करने का तरीका है उनके हाथ का खाया बनाया हुआ खाना, फूड कुक बाय नॉन डिवोटीज, अगर ऐसा खा रहे हैं तो वो भी असत्संग में इंक्लूड होता है। तो असत्संग करने से हमारा जितना भी हमने जो अर्जित करी है भक्ति, वो सब क्या होती है, एक बारी में खत्म हो जाती है। जैसे कि हम सौभरी मुनि के केस में देखते हैं, इतने सारे उन्होंने भक्ति इकट्ठी करी, इतना सारा अपना जो इकट्ठा किया तपस्या का बल, तपोबल, लेकिन वो एक बारी में उन्होंने खत्म कर दिया उसको, उस असत्संग से। तो असत्संग कैसे कार्य करता है, कैसे हमको इफेक्ट करता है असत्संग, भगवान गीता में बता रहे हैं दूसरे अध्याय के 62 श्लोक में कि ध्यायते विषयां पुंसा संगा तेषुपजायते, कि जब हम विषय के चिंतन करते हैं उससे क्या होता है, संग उत्पन्न हो जाता है। संग प्रभु बता रहे हैं संग अटैचमेंट, और संग का मतलब एसोसिएशन भी होता है। अटैचमेंट और एसोसिएशन दोनों बहुत इंटर रिलेटेड है। जब हमको किसी चीज से अटैचमेंट होता है तो हम वैसा एसोसिएशन ढूंढते हैं, जिसको व्यक्ति को पीने से एसोसिएशन है, मदिरा पीने से, तो वैसा एसोसिएशन ढूंढता है। तो अटैचमेंट से एसोसिएशन ढूंढते हैं, और एसोसिएशन से अटैचमेंट होता है। जिसको पीने की आदत नहीं है वो ऐसे लोगों का संग करेगा तो उसको अटैचमेंट हो जाएगी। तो दोनों इंटर रिलेटेड है। तो संग से क्या होता है, अटैचमेंट हमको होती है, और अटैचमेंट जब होती है तो हम ऐसा संग ढूंढते हैं। और एसोसिएशन जो है, संग जो है, वो जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमको व्यक्ति साथ में होना चाहिए, मेरे पास बैठा होगा तभी मैं उसका संग कर सकता हूँ। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि एक जो मक्खी भी है वो भी गुरु के साथ हो सकता है बैठी हो व्यास आसन पे, लेकिन वो गुरु का संग नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो उनसे इंस्ट्रक्शंस नहीं ली, उनको फॉलो नहीं कर रही, इसलिए प्रभुपाद ने बताया। तो उसी तरीके से हो सकता है कोई व्यक्ति साथ में, पास में भी हो लेकिन तब भी वो संग नहीं कर रहा हो, लेकिन पास में नहीं हो तब भी संग कर रहा हो। जो संग है, इट इज एसोसिएशन मीन्स कि जब हम इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं, शेयरिंग ऑफ हार्ट। सिर्फ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से एसोसिएशन नहीं होता, साथ में बैठने से, आसपास रहने से एसोसिएशन नहीं होता। एसोसिएशन मीन्स कि शेयरिंग ऑफ हार्ट, व्हेन वी आर एक्सचेंजिंग द इमोशंस, तो उससे संग होता है। जैसे कि हो सकता है कुछ लोग मंदिर में कार्य करते हों, मंदिर में भी एम्प्लॉय हों, मंदिर में कार्य करते हों, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से कार्य कर रहे हो, लेकिन अगर उन्होंने भक्तों से अपना हृदय एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने एक्सचेंजेस ऑफ इमोशंस नहीं करे, अपने भाव को व्यक्त नहीं किया भक्तों के साथ में, तो उन्होंने एसोसिएशन नहीं किया। हो सकता है वो कई सालों से हो लेकिन फिर भी भक्ति में आगे नहीं बढ़े हो, क्यों? उन्होंने एक्सचेंज वो नहीं हुआ, वो उनका संग नहीं माना जाएगा, वो संग नहीं होगा। संग में ये शेयरिंग ऑफ हार्ट, ये एक्सचेंज ऑफ इमोशंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो अफ्रीका से आया है, किसी अफ्रीका से किसी जंगल के जैसे देश से आया है इस जगह से, और वो इंडिया में पढ़ने आता है, और इंडिया में उसे देखता है कि उसके सारे फ्रेंड एक मैच चल रहा है और मैच में खूब खुश हो रहे हैं, आखिरी ओवर चल रहा है, वो ऐसे एकदम एक्साइटेड हो रहे हैं, और उसने इंडिया जीत गई तो सब एकदम ऐसे खुशी मना रहे हैं, तो वो व्यक्ति देखो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्यों खुश हो रहे हैं, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुशी में वो भी खुश होने लगा, और धीरे धीरे उससे क्या हो गया, उसको उस चीज में अटैचमेंट डेवलप होने लगा, तो एसोसिएशन क्योंकि उसने उनका किया तो उसका क्या हुआ, उसकी भी अटैचमेंट उन चीजों में हो गई, उसकी भी डिजायर वो आने लग गई, तो एसोसिएशन से संघ के आवश्यक क्या होता है, हमारी डिजायर्स उत्पन्न होने लग जाती हैं उस चीज के लिए कि वो चीज मुझे भी करनी है। अगर हम अभक्तों का संघ करते हैं कि उनसे अगर अपने हृदय को एक्सचेंज करते हैं तो उस एसोसिएशन से क्या होता है, उस संघ से क्या होता है, हमारी डिजायर्स उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। संगात संजायते कामः, कामना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, इच्छाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, और ये कामनाएं दो तरह की हो सकती है, कुछ हो सकती है नॉन डिवोशनल और कुछ हो सकती है एंटी डिवोशनल। नॉन डिवोशनल हो सकती है कि हमने किसी व्यक्ति के पास गए, वहाँ पे हमने देखा कि वो कुछ टीवी देख रहा है, मैच चल रहा है, हमको भी थोड़ा देख लिया हमने मैच, तो लेकिन फिर बाद में आ रहा है अरे क्या कर रहा हूँ, तो उसे नॉन डिवोशनल, ये भी हानिकारक है लेकिन फिर भी एक टेम्परेरी कुछ समय के लिए। लेकिन दूसरा हो सकता है एंटी डिवोशनल, कि जिससे हमारी भक्ति में जो फेथ है, हमारी भक्ति जो है वो खराब हो जाए ना, कोई ऐसे गलत कार्यों में इंडल्ज होना। तो ये दोनों तरह की डिजायर्स उत्पन्न हो सकती हैं सिर्फ किससे, एसोसिएशन से, उनसे अटैचमेंट से। बुरे संगति को जो हमारा है अभक्तों का संग, तीन तरीके से हमको प्रभाव कर सकता है, तीन स्तर पे हमको भाव कर सकता, हमको इफेक्ट कर सकता है। पहला है डिजायर के स्तर पे, दूसरा है इंटेलिजेंस के स्तर पे, और तीसरा है फेथ के स्तर पे। ये तीनों इंक्रीजिंग डिग्री में है। जब डिजायर के स्तर पे होता है तो थोड़ा कम सीवियर होता है, जब इंटेलिजेंस के स्तर पे होता है तो ज्यादा सीवियर होता है, जब फेथ को इफेक्ट करता है बैड एसोसिएशन, बुरा एसोसिएशन, तो बहुत सीवियर होता है। डिजायर के स्तर पे का मतलब क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल देते देखते हैं चैतन्य चरितामृत में, अभी हम पढ़ रहे थे कुछ दिनों पहले काला कृष्णदास के बारे में, काला कृष्णदास उन भट्टाहारी लोगों से अट्रैक्ट हो गए और चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चले गए उनके पास, तो महाप्रभु उनको फिर बड़ी मुश्किल से उनको लेके आए वापस। तो हम भी ऐसे अभक्तों के संग से हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं टेम्परेरली, कुछ समय के लिए हम भी उनके से प्रभावित हो गए, जैसे कि हम कहीं गए और हमें देखा कि टीवी पे कुछ चल रहा है, कुछ गलत चीज़ देख ली हमने टीवी पे, तो हमारे थॉट्स में वो चीज़ आ जाती है, तो कुछ समय के लिए हम टेम्परेरली उनका संग करने लग जाते हैं, तो हमारी डिजायर्स इफेक्ट हो जाती हैं, और डिजायर के लेवल पे उस एसोसिएशन ने हमको इफेक्ट करता है, ये टेम्परेरी होता है, कुछ समय में हम होता है उसको ओवरकम कर लें, हम वापस सही एसोसिएशन में जाएं, सही डिजायर को उत्पन्न करें, तो हम उसे वापस निकल के आ जाते हैं। सेकेंड लेवल है इंटेलिजेंस के लेवल पे, कि जब हमको बैड बुरी एसोसिएशन इंटेलिजेंस के लेवल पे इफेक्ट करती है, इसका एग्जांपल आता है अजामिल का। अजामिल पूरा प्रयास कर रहा है लेकिन वो उनको उस दृश्य को जो उसने देख लिया था उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। अब उसकी बुद्धि जो पूरी हो गई थी, कैसे हो गई थी, उस कामना की वजह से उसकी बुद्धि, उसकी इंटेलिजेंस बिविल्डर्ड हो चुकी थी कम्प्लीटली। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि हम कई बार ऐसे लोगों का संग करते हैं या ऐसे लोग हमको जो इंटेलेक्चुअली हमको डिफीट कर दे, इंटेलेक्चुअली हमको कन्विंस कर दे कि जो आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। जैसे कि वो व्यक्ति कोई नया भक्त आते हैं, अगर उन्होंने डीवाई सेशन अटेंड नहीं किया तो उनको कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, देखो इतने सारे भूकंप आ रहे हैं, इतने सारे तूफान आ रहे हैं, इतने आंधी, इतने लोग मर रहे हैं, इतने बेगुनाह लोग मर रहे हैं, कहाँ है भगवान, कोई भगवान नहीं है। तो कई बार लोग कन्विंस होते हैं, बात तो सही कर रहे हैं, भगवान तो नहीं है। तो उनका जो फेथ है वो कैसा हो गया, उनका जो अब इंटेलिजेंस के लेवल पे वो इफेक्ट हो गया उस एसोसिएशन से, और वो भी मानने लग जाते हैं। तो ये ज्यादा डेंजरस है। ये डेंजरस ज्यादा क्यों है, क्योंकि जब हम डिजायर के लेवल पे होते हैं तो व्यक्ति अपने आप को इन्फीरियर मानने लगता है कि मैंने गलती करी, गिल्टी फील करने लगता है, तो अपने आप को नीच मानने लगता है, तो चांसेस है कि वापस ठीक हो सकता है। लेकिन जब इंटेलेक्चुअल के लेवल, इंटेलिजेंस के लेवल पे, बुद्धि के स्तर पे जब वो इफेक्ट हो जाता है उस एसोसिएशन से, तो क्या होता है, व्यक्ति समझ लगता है मेरे को ज्यादा पता है, देखो ये सब लोग बेकार गलत काम कर रहे हैं, भगवान पूजा कर रहे हैं फालतू में, भगवान तो है ही नहीं, तो अपने आप को सुपीरियर मानने लगता है, और उस समय उसको ठीक कर हो पाना मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है वापस ठीक होना। और तीसरा सर है, जब बुरी संघ की वजह से हमारा जो फेथ है, हमारी श्रद्धा है, वो हिल जाती है। इसका एग्जांपल देखते हैं केकई का। केकई भगवान राम को बहुत प्रेम करती थी, भगवान राम को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन जब उसने मंथरा का संग किया और मंथरा ने उसको बताया कि राम जब है राजा बनने वाले हैं, केकई तो खुश थी, वो अपने उसने गले से हार निकाला और उसको पहना दिया कि तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है। लेकिन उन्होंने क्या किया, मंथरा ने उसको फेंक दिया, उसको बोला तुमको पता नहीं है तुम क्या कर रही हो, तो उसको पूरा कान उसके गलत चीजों से भर दिए। और उससे क्या हुआ, उसका जो फेथ था श्री भगवान राम में, वो भगवान को सबसे प्रेम करती है, लेकिन अब क्या समझने लगी कि भगवान राम मेरे, यानी राम जो है मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं, कि अगर राम राजा बन गए तो मेरे को दासी बनना पड़ेगा, और वो बहुत कुछ फिर स्पेकुलेट करने लगी उसके हिसाब से। और ऐसे उसका जो फेथ है, जो श्रद्धा है भगवान में, टूट गई पूरी तरीके से। वो तभी ठीक हुई जब बाद में भरत आए, भरत ने फिर उनको बताया कैसे करके। तो ये हमारे साथ भी हो सकता है, जैसे भी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट का, कई बार भक्त लोग इंटरनेट पे संग करते हैं, इंटरनेट का ऐसे लोगों का संग करते हैं। स्पेशली कुछ समय पहले बहुत फेमस आया था कि इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है, बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना। हालांकि जो लोग को इस्कॉन के बारे में नहीं पता है, वही लोग प्रभावित हुए जो कभी इस्कॉन आते नहीं है। हमको रास्ते में बहुत बार लोग ऐसे मिलते हैं, जो लोग आते हैं उन्हें पता है कि क्या असलियत है क्या नहीं है, कि कुछ ऐसा नहीं है, ये सब ऐसी झूठ दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रभावित हो जाते हैं उससे, तो उनका फेथ जो है, श्रद्धा है, वो खत्म हो जाती है उससे, हमारा फेथ को डैमेज कर देती है। फेथ उसके समान है कि कोई पेड़ है, आम का पेड़ है, हमने कई साल लगा के उस आम के पेड़ को खड़ा किया, लेकिन अब क्या किया, उसको कुछ कुल्हाड़ी मार के कुछ घंटे में या कुछ मिनट में वो पूरा पूरा पेड़ गिरा दिया। तो असत्संग करने से हमने जितना पूरा पेड़ खड़ा किया अपनी भक्ति का या अपने जो सुकृति का, वो सब खत्म हो सकता है एक बारी में असत्संग करने से। सो क्या तरीका है, कैसे हम इस असत्संग से बच सकते हैं? हम इस भौतिक समाज में रह रहे हैं, तो इसका हम भक्तों का से तो हम उनका इंटरेक्शन तो हमको होगा ही, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उनको हमको कोई इंटरेक्शन ना हो, कभी मिले ना भक्त। हमको बाहर भी जाना है, प्रचार भी करना है, अपना कार्य भी करने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए? हम उनको ऐसा भी नहीं सोच सकते कि ठीक है शास्त्रों में इतना बताया गया उनके बारे में कि उनका संग करना इसके समान है कि हम जानबूझ के विष पी रहे हैं, तो हम उनसे नफरत करने लग जाएं, उनसे उनसे घृणा करने लग जाएं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना। एक बहुत सुंदर एग्जांपल मैं राधेश्यामपुर का सुन रहा हूँ, बता रहे थे, बहुत से एग्जाम्पल दिया उन्होंने इसके बारे में, कि जैसे कि हम किसी होटल में जाते हैं, किसी जगह पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं कि हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप, क्या लेंगे आप, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे हम सबको। वो बोल रहे हैं ऐसा, क्या वो हृदय में ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्या वो हृदय में सही में आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छा आपका ख्याल रखना चाहते हैं? नहीं। हृदय में क्या है, उनको किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है उनका बेनिफिट होगा, उससे हमें कुछ कमीशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, जो भी। तो एक्चुअली वो लिप सर्विस कर रहे हैं खाली, है ना, हृदय से नहीं कर रहे। तो बताया कि हमको भी ऐसे ही जब जा रहे हैं भक्तों के संग में, हमको भी ऐसी लिप सर्विस करना है, हमको जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी हमारी जरूरतें हैं, वैसे करना है, लेकिन अपना हृदय शेयर नहीं करना, अपना हार्ट रिवील नहीं करना उनके साथ। वो जरूरी नहीं है वो करना, अपना ड्यूटीज करें, कार्य करें, अपना कार्य करके आ जाएं वापस भक्तों के संग में। और अगर हमें लगे कि अभक्तों के संग से हम प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, उसी समय स्टार्टिंग में ही हमें उसे क्योर करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। जैसे अजामिल का था, अजामिल ने जब वो दृश्य देखा तो अपने बुद्धि से प्रयास कर रहा था उसको काउंटरैक्ट करने का, उसको हटाने का, कि नहीं नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाया, सक्षम नहीं हो पाया। गलती क्या थी, उसने किसी का सहारा नहीं लिया, तो उसे अपने पिताजी के पास जाते तो वो उनको शायद हेल्प कर देते, वो उनको बताते नहीं तुमको ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, या किसी भक्त के पास जाते तब के भक्तों का संग होता। तो ऐसे भरत महाराज के केस में देखते हैं, भरत महाराज ने भी प्रभुपाद बताते हैं क्यों उनका फॉल डाउन हुआ, क्योंकि उन्होंने भक्तों का संग नहीं किया। तो जब भी हमको ऐसा लगे कि वो अभक्तों का संग हमको प्रभावित ज्यादा कर रहा है, हम उसे ओवरकम नहीं कर रहे अपने बलबूते पे, तो हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में जाना चाहिए जिनका फेथ है बहुत स्ट्रांग है भक्ति में, तो वो हमको वापस फेथ देंगे भक्ति के अंदर। और दूसरा हमें क्या करना चाहिए, दो चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि वी शुड डिस्क्रिमिनेट एंड वी शुड बी फेयरफुल। हमको भेदभाव करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए किसके बारे में, क्या सही है मेरी भक्ति के लिए, क्या सही नहीं है मेरी भक्ति के लिए, अनुकूल और प्रतिकूल, इनका डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए हमेशा। और दूसरा हमें हमेशा फियरफुल भयभीत रहना चाहिए, किससे भयभीत रहना चाहिए, कि कोई चीज़ मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक तो नहीं है, कि हमें केयरफुल रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में लोग पानी पिएंगे तो फिर देखते हैं बिस्लेरी वाटर लेंगे, किनले का वाटर लेंगे, चाहे 25 रुपए का 30 रुपए का देगा, लेकिन वही लेंगे। ऐसा नहीं कहीं पे भी पानी पी लेंगे हम, लेकिन ये हम अपनी जो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपनी बॉडी का, फिजिकल बॉडी का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जब अपने अपने जो मन में क्या डालना है, अपने कॉन्शियसनेस में क्या डालना है, उसमें क्या कुछ भी कूड़ा कूड़ा कर डाल देंगे, नहीं, हम केयरफुल रहेंगे, कहीं मेरे शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है। उसी तरह से हमारे सटल शरीर के लिए, मेरे सूक्ष्म शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है, मेरे मन के लिए, मेरी भक्ति के लिए हानिकारक तो नहीं है। तो इसलिए हमको उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। तो चाहे संघ हो या असत्संग हो, दोनों ही बहुत पावरफुल तरीके से एक्ट करते हैं। अगर जिन्होंने चले प्रभुपाद का संग किया, वो कितना उनका जीवन में प्रभावित हुए, हिप्पी से हैप्पीज बन गए। लेकिन जिन्होंने प्रभुपाद के संग के समय पर ही, जो भक्तों ने प्रभुपाद के असत्संग किया और प्रभुपाद के मूवमेंट में रहते हुए भी ना, तो उनका पतन भी हुआ। चले प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जब एक बार न्यू वृंदावन का हम इंसिडेंस जानते हैं, कैसे 4 सन्यासी थे, प्रभुपाद उनको भेजा है, न्यू वृंदावन में गए थे वो, और न्यू वृंदावन में वो मायावाद का प्रचार करने लग गए थे कि प्रभुपाद भगवान है, और प्रभुपाद बहुत ज़्यादा कुंठित, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उससे। और प्रभुपाद ने बाद में बताया था क्यों हुआ ये, क्योंकि उन्होंने ऐसा असत्संग किए, उनके गुरु भाइयों से उन्होंने कुछ सुना प्रभुपाद के बारे में ऐसा, उसकी वजह से वो उनका जो ऐसा ये सब चीज़ें उनके अंदर कंटेमिनेशन आ गया था। तो प्रभुपाद ने फिर उन भक्तों को बोला कि आप सबको नेक्टर ऑफ डिवोशन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आप सबको मेरी बुक्स बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो जब हम प्रभुपाद की बुक्स बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, प्रभुपाद का संग हमेशा करेंगे, तो हम इस असत्संग से हमेशा बचे रहेंगे। उस इंसिडेंस में देखते हुए, क्योंकि वो सब भक्त बताते हैं, अपने शेयर करते हैं कि उस समय किसी को भी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इतनी भी। कुछ एक दो भक्तों को जिनको फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने प्रभुपाद के बुक्स को रेफर किया, और प्रभुपाद के बुक्स को रेफर करके उनको कन्विंस थे कि ये जो सन्यासी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और उन्होंने प्रभुपाद को रिपोर्ट किया, फिर प्रभुपाद ने उस चीज़ को करेक्ट किया। लेकिन बाकी जो भक्त थे, उन सबको फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं थी। और बहुत सारे भक्त, मैं पढ़ रहा राधा दामोदर विलास में, वैसे श्री कृपा बता रहे हैं, बहुत सारे भक्त चले गए उस मोमेंट से उस वजह से। क्यों? क्योंकि वो प्रभुपाद के बुक से फिलोसफिकली कन्विंस नहीं थे, वो असत्संग कर रहे थे, लेकिन उसे सत्संग का प्रभाव स्ट्रांग नहीं था। तो दोनों प्रभाव करेंगे, लेकिन हम किसका प्रभाव स्ट्रांग करवाएंगे वो हमारे ऊपर, हम किस कौन सा को ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे इसलिए इसके तात्पर्य बता रहे हैं श्लोक में कि कृष्ण भावनामित आंदोलन भक्त उत्पन्न करने के लिए अपने अनेक केंद्रों की स्थापना कर रहा है। स्पेशली जैसे हमारे इतने केंद्र बने हुए हैं, हमारे सारे केंद्रों का एकमात्र उद्देश्य ही ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की भक्तों को बनाने के लिए, ताकि हर कोई भक्त बन सके। और वो भक्त कैसे बनेंगे? कि कृष्ण भावनामित आंदोलन के सदस्यों की क्रमशः संगति करने से, भक्तों का संग करने से, केवल प्रसाद ग्रहण करना तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से सामान्य लोग काफी ऊंचे उड़ जाते हैं। सिर्फ ऐसा करने से वो ऊपर उठ सकते हैं। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अकेले में एकांत स्थान भी तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक वहां अच्छी संगति ना मिले। तो एकांत स्थान में भी तपस्या करना या भक्ति करना भी इतना बेटर, अच्छा नहीं है जितना भक्तों के संग में हम संगति करें, भक्तों के संग में भक्ति करें। अगर भक्तों के संग में हम भक्ति करेंगे तो उससे हमारा असली में एडवांसमेंट होगा, और सिर्फ आने मात्र से। प्रभुपाद कह रहे हैं हमने सारे सेंटर, सारे मंदिर बनाए इसलिए हैं कि सब लोग आएं, भक्तों का संग करें, प्रसाद पाएं, कीर्तन करें और भक्त बन जाएं, तो ताकि अपने सब अपने जीवन को सिद्ध कर सकें, इसलिए सारे मूवमेंट बनाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं, हम सबका उदाहरण ही है, हम सब भी भक्तों के संग में आने की वजह से इस असत्संग से बचे और इस भक्ति के मूवमेंट को प्राप्त किया। मैं सुन रहा था एक लेक्चर, इसमें नारायणी माता जी प्रॉपर डिसाइपल हैं, वो शेयर कर रही थी। तो माता जी बता रही थी कि वो पहले जैसे जीवन जी रहे थे, जैसे हिप्पी लोग जीवन जीते थे वैसे जीवन जी रहे थे, लेकिन वो फिर भी एक गुरु की तलाश में थे, गुरु को चाहते थे, गुरु का खोज कर रहे थे, बहुत जगह ढूंढा उन्होंने। एक दिन उनको एक न्यूज़पेपर मिला, न्यूज़पेपर में उन्होंने ऐड देखी, उस ऐड पर लिखा था संडे लव फीस्ट। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अजीब सा नाम है, कुछ तो होगा, जाके देखते हैं। तो वो गए वहाँ पे, लेकिन उनके पास कुछ पैसा नहीं था, कुछ कन्वेंस नहीं था, तो हिच हाइक करके, मतलब वो लिफ्ट मांग के अलग अलग जगह से वो पहुँचे मंदिर में। जब मंदिर में पहुँचे, देखा सब बहुत खूब कीर्तन कर रहे हैं और खूब उत्साह में हैं। कह रहे उनके उत्साह को देख के माता इतने प्रभावित हुए, तो भक्त इतने उत्साह से कीर्तन कर रहे थे। और मंदिर में जब घुसे तो देखा कि मंदिर का एक अजीब सा बहुत सुंदर सा वातावरण था, बड़ा अद्भुत वातावरण था। उस मंदिर की जो दीवारें थी वो बड़े अजीब रंग से पेंट हुई थी, एक तो थी पूरी पिंक, एक था पूरा पर्पल, एक था येलो। माता जी को लगा मैं किसी और शायद दुनिया में आ गई हूँ, और उन्होंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है, शायद ट्राई करना चाहिए। मैं भक्तों से पूछा कि मुझे क्या करना होगा इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए क्या करना होगा, क्या नियम है यहाँ पे? तो भक्तों ने कहा आपको क्या करना होगा, देखो पहले सबसे पहले चैंटिंग करनी होगी, दूसरा क्या करना होगा डांस करना होगा, और तीसरा क्या करना होगा खाना होगा। ये तीन चीज़ें करनी होगी। तो माता ने कहा हाँ तो कर सकते हैं। तो माता ने कंटिन्यू कर जाना शुरू किया। और बता रहे वहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे पुराने पुराने जो बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे इस्कॉन के उस समय, ससुर महाराज थे वो प्रेसिडेंट थे, जयदेव स्वामी महाराज थे वो इस्कॉन प्रेस को देखते थे, गिरिराज स्वामी महाराज संकीर्तन लीडर थे, हृदयानंद स्वामी महाराज उस समय प्रभु थे वो कमांडर थे, रुक्मिणी माता थी वो हेड पुजारी थी। तो उन सब का संग किया माता ने, उनके संग में आती ही हर वीक आती थी। तो दो सप्ताह बाद उनको पता लगा, भक्तों ने बताया कि श्रील प्रभुपाद आ रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जब आते थे माता बता रही है कि क्या होता है कि जितना भी मंदिर थे, मंदिर का जितना भी पेंट था सारी दीवारों को फिर से पेंट करना होता था। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि जो दीवार अभी यूज हो रही है वो इम्प्योर हो चुकी है, तो प्रभुपाद आ रहे हैं इसलिए पूरी दीवारों को फिर से पेंट करेंगे। तो माता जी को लगाया सेवा में पूरी रात दीवार पेंट करने के लिए, उन्होंने पूरी रात वो दीवार पेंट करी। उसके बाद लेकिन जब बाद में प्रभुपाद का फोन आया भक्तों की मैं समा उधर नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं चार सन्यासी को भेज रहा हूँ, वही सन्यासी चार सन्यासी को प्रभुपाद ने भेजा, ब्रह्मानंद स्वामी महाराज को, गर्ग मुनि स्वामी, सुबल स्वामी और विष्णुजन स्वामी महाराज को। और वो उनके संग उन्होंने किया, माता जी ने उनका संग मिला, उनको वो संकीर्तन पे जाते थे रोज, माता जी रोज संकीर्तन पे जाती थी। ऐसा करके बहुत उनको उत्साह आया। माता जी बता रहे कि वहाँ पे एक बार भी मंदिर चले जाता था तो वापस नहीं आ सकता था। वो मंदिर जाते थे तो जैसे माता जी कह रहे थे मैं टाइपिंग में को आती थी, तो उन्होंने मेरे को टाइपिंग की उस समय बहुत ज़रूरत थी क्योंकि प्रभुपाद बुक्स पब्लिश कर रहे थे, तो उनको सेवा दे रही टाइपिंग की। अब वो टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग किया, उसके बाद भक्तों ने कहा अच्छा अच्छा टाइपिंग कर लिया, अभी हम आरती अटेंड करेंगे, अभी आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा ठीक है, आरती अटेंड कर लिया। अब आरती अटेंड कर लिया, अभी नहीं अभी भी प्रसाद होगा, तो अभी प्रसाद पा लिया। अब प्रसाद पा लिया, अब चलो हम सब संकीर्तन में जाना है, सबको संकीर्तन में जाएंगे, सब संकीर्तन में जाते हैं, संकीर्तन से वापस आए, अब चलो सबको वापस आरती अटेंड करनी है, फिर आरती अटेंड करी, फिर अगली क्लास करनी है। देखिए जब तक मेरे को समझ आता तब तक रात को 8 बज चुके थे, ऐसे पूरा दिन निकल जाता था। तो ऐसे करके भक्तों ने उनको संग दिया। और एक दिन ऐसी जब इन चार सन्यासी आए थे और सारे भक्त इतने उत्साहित थे, रोज संकीर्तन बजाते थे, माता ने सोचा एक हफ्ता हो गया अब मैं यहीं स्टे कर लेती हूँ। तो माता ने फिर पूरा जीवन हमारे डिसाइड किया ठीक है अब मैं यहीं पे मंदिर में स्टे करती हूँ। तो ऐसे भक्तों के संग से कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभावित हुए हैं, प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं यहाँ पे हमने इस्कॉन सेंटर्स बनाए इसलिए कि हम भक्तों के संग से प्रभावित हो सके और भक्त बन सके हर कोई। तो हम ये देख सकते हैं साबरी मुनि के प्रसंग से कैसे अभक्तों का संग और भक्तों का संग दोनों कितना शक्तिशाली होता है, कि हमारे पास चॉइस है हम किसका संग करें। यहाँ पे साबरी मुनि हमको सतर्क कर रहे हैं अभक्तों के संग से हमको सतर्क रहना चाहिए, और उससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि हम भक्तों का संग करें। हरे कृष्ण। सॉरी मैं थोड़ा लेट, इसके 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।